ओम शांति। बहुत अच्छा अवसर मिला है हम सभी को। किस चीज का? तपस्या का बड़ा अच्छा अवसर मिल गया है। और आज से आपने स्पेशल जो भट्टी शुरू हो गई है उसमें भाग लिया और उसका भरपूर आनंद लिया, ठीक है ना? आज से जो योग भट्टी हमारी शुरू हुई उसका किन किन लोगों ने भरपूर आनंद लिया ऐसे कीजिए। अधिकांश लोगों ने लिया, ये अच्छी बात है। अधिकांश लोगों को भरपूर आनंद लेना भी चाहिए, क्योंकि ये स्पेशल अवसर जब मिला है तो इसका सदुपयोग होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि समय ऐसे ही बीत जाता है, लेकिन ठोस रीति से, सॉलिड तरीके से सोच विचार करके जब उसका सदुपयोग करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं तो फिर हम उसका अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर पाते हैं, सही है ना? तो क्या किया है आप लोगों ने, क्या योजना बनाई है? क्योंकि ये तो अभी चलेगा योग भट्टी जनवरी में 18 तारीख तक। क्योंकि उसकी प्लानिंग करेंगे तो ज्यादा फायदा हो जाता है। हाँ नहीं, ठीक है, उससे वो भी योग ही है। सेवा में जाते हैं वो एक प्रकार का योग है, कर्म योग है, बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा भाग्य बनता है उसमें। एक तो होता है कि दिखावे के लिए लोग करते हैं बहुत कुछ, दिखावों से दूर हट करके प्रैक्टिकल में सॉलिड तरीके से कुछ भी करने का हमें लक्ष्य रखना चाहिए। बाबा ने हमें वही लक्ष्य दिया है। दिखावे से कहने का मतलब मेरा ये है कि कई बार आपने देखा होगा ट्रैफिक कंट्रोल बजता है, लोग भोजन कर रहे हैं, रुक जाएंगे, डाइनिंग हॉल में आप देखेंगे एकदम सन्नाटा हो गया, ऐसा लगता है जैसे सारे के सारे महानतम योगी उतर गए जमीन पे, ठीक है ना? और जैसे ही ट्रैफिक कंट्रोल पूरा हुआ कितना शोर होता है हॉल में। बाबा ने कहा है कि भोजन करते वक्त शोरगुल करो, तो प्रैक्टिकल कहां गया? इसी को मैं मानता हूं कि दिखावा है। योग तो अंदर से होना चाहिए ना, जीवन में कुछ उतरे, सच्चाई, सफाई, शक्तियां, पावर, बल, ये प्रकट होना चाहिए। एक दूसरे के साथ व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम में प्रकट होना चाहिए। बाबा ने क्या बताया है कि हमें ईश्वरीय मर्यादाओं को अपने जीवन में स्थान देना है। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि जोर जोर से हंसो, जोर जोर से बात करो, कभी नहीं। साकार ब्रह्मा बाबा को जिसने देखा है, जिन लोगों ने, वो तो जानते हैं कि बाबा का आचरण कैसा रहा, लेकिन जिन्होंने साकार को नहीं देखा वो अव्यक्त बाप दादा को तो देखते हैं। अव्यक्त बाप दादा में कौन है? बाबा है और दादा है, शिव बाबा है और ब्रह्मा बाबा है, दो है। तो आप लोगों में से किसने देखा है अव्यक्त बाप दादा को आवाज से हंसते हुए? हाथ उठाइए। तो फिर हमें क्या करना है? फॉलो करना है ना। यह है प्रैक्टिकल, यह है व्यवहार, इसको जीवन में उतारना है। इसके लिए मेहनत है, इसके लिए चिंतन है, इसके लिए विचार है, इसके लिए लंबी प्रक्रिया है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये एक प्रोसेस है और ये अंदर ही अंदर चलते रहना चाहिए सुबह से लेकर के शाम तक। क्योंकि जीवन में तो व्यावहारिक रूप से इन चीजों को उतारना है। और इसमें सबसे ज्यादा मददगार हमारे लिए क्या होता है? वो होता है योग। और योग की पहली कड़ी ये है स्व, सेल्फ, अपने को समझना, ठीक से अपने को जानना। स्व को पहचानना, अपने स्वरूप में बहुत गहराई तक उतर जाना, तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। देखिए 70 साल 75 साल 78 साल से दादियां प्रयत्न कर रही है, हम लोग तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 ऐसे प्रयत्न कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमें ज्यादा मेहनत करनी है, अपने बारे में विचार करना है, अपनी गहराई में जानना है, अपने आप को देखना है, अपने आप को पहचानना है। तो एक विधि का और भी हमें यूज करना है। बाबा ने हमेशा ही बताया है कि बाबा तो हर जगह चक्कर लगाते ही हैं, तो बाबा जब चक्कर लगाते हैं तो बाबा क्या करते हैं, बच्चों को दृष्टि देते हैं, ठीक है। और योग के समय अगर हमारी दृष्टि बंद है तो फिर हम दृष्टि कैसे प्राप्त करेंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। सही है या गलत, सही है ना। लेकिन व्यावहारिक रूप से यह देखा गया है कि 5-7 मिनट के अंदर में आंखें बंद हो जाती है, और ये पक्का जानिए कि अगर आपकी आंख बंद हो गई तो अगले 1-2 मिनट में आप नींद में भी चले जाएंगे, और तब क्या होगा कि आपका वक्त जो है सो गुजर जाएगा। इसीलिए जो मेरा निवेदन है, मेहनत का वो यही है, आपको पूर्व तैयारी करनी है, अभी से तैयारी करनी है कल के अमृत वेले के लिए। अभी से ये विचार करना है कि कैसे क्या करें कि हम बिल्कुल जागृत, बिल्कुल नींद के प्रभाव से मुक्त तरीके से यहां आवें और 1 घंटे तक भरपूर आनंद लें। इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी। सुबह में जब हम उठें तो पहले थोड़ा सा एकदम फ्रेश हो लें, तरोताजा हो लें, इस फूर्ति से भर जाएं, यहां करके बिल्कुल कंसस होकर के बैठें और विचार करते रहें। याद में हम क्या करते हैं, अपने आप को अपने स्वरूप में टिका लेते हैं, शरीर को अलग रख के अपने सूक्ष्म बिंदु रूप ज्योति स्वरूप में आते हैं और फिर अपने धाम की तरफ चले जाते हैं, बाबा के पास जाते हैं। तो बाबा के पास पहुंच जाने के लिए एक पल में अभ्यास चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि बार बार ऊपर नीचे होना पड़ता है, अभी कनेक्शन जुड़ा, अभी टूट गया, टूट गया परवाह नहीं, टूटने दीजिए, मगर अगले ही पल फिर बाबा के सामने आइए। ये अभ्यास करनी पड़ेगी। अपना जो सूक्ष्म एक फरिश्ता स्वरूप है, किस किस ने अपना सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप देखा है, ऐसे कीजिए। कुछ लोगों ने देखा है, सभी को देखना है। हम सभी का अपना एक सूक्ष्म फरिश्ता स्वरूप है, इसी स्वरूप से हम एक पल में संसार के दूसरे कोने तक पहुंच सकते हैं। हमें अपने योग के अभ्यास को इतना बढ़ाना है कि अगर हमारा रिश्तेदार अमेरिका में कहीं कोई बैठा है और इस पल अगर सूक्ष्म स्वरूप से हम उसके पास जाकर के उसको देख रहे हैं और उसको नाम से पुकार रहे हैं कि अरे रमेश इधर देखो, तो उसको ऐसा महसूस होना चाहिए, ठीक, उसको महसूस होना चाहिए कि कोई मुझे याद कर रहा है, कोई मुझे कॉल कर रहा है। तो सूक्ष्म शरीर की इतनी ताकत है, सूक्ष्म शरीर तो पल भर में कहीं भी जाएगा। अमेरिका तो बहुत नजदीक है, अमेरिका की हवाई दूरी 10,000 किलोमीटर से कम होगी, और अपना वतन जो है वो तो अरब खरब माइल है, अरबों खरबों माइल, चांद सूरज सितारों से बहुत पार। अभी कुछ दिन पहले मार्स पे गया था अपना वैज्ञानिक, 68 करोड़ माइल है वो, पृथ्वी के बहुत नजदीक, 68 करोड़। तो आप समझिए कि चांद सूरज सितारे कितने तारे हैं दूर दूर, अरबों खरबों, और उससे बहुत ऊपर है अपना धाम। तो कितनी गति चाहिए, कितना स्पीड चाहिए, खरबों खरब माइल पल के भी छोटे से टुकड़े में अपने सूक्ष्म रूप को वहीं देखिए। जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि सफर चालू किया और धीरे धीरे वहां पहुंच रहे हैं, नहीं, अपना 3 स्वरूप है, आत्मा यहां है, लेकिन संकल्प रूप से अपने सूक्ष्म स्वरूप को हमेशा ही बाबा के सामने देखिए। हम बाबा के सामने ही बैठे हैं, सूक्ष्म रूप में बाबा हैं, उनके सामने हम बैठे हैं, और बाबा की आंखों में आंखें डाल दीजिए और आप बिल्कुल अकेले हैं वहां, दूसरे से कोई लेना देना नहीं, मैं और बाबा। और फिर बाबा से बात कीजिए। तो बाबा से क्या बात करेंगे? बाबा को बताइए कि बाबा ये समस्याएं हैं, इसको कैसे दूर करूं, सूक्ष्म में ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सेटल करें, कैसे मैं आपके समान बन जाऊं, कैसे हर प्रकार की दिक्कतें, कठिनाइयां, परेशानियां खत्म हो जाए, कैसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाऊं, मास्टर प्रेम का सागर बन जाऊं। हम लोग स्वमान तो लेते हैं ना हर दिन कुछ ना कुछ, तो जैसे कि हम लोग स्वमान लेते हैं कि मास्टर शक्ति का सागर, मास्टर प्रेम का सागर, ठीक है, ले लिया, बड़ी अच्छी बात है। मगर कुछ ऐसा हो जाता है कि मन में उदासी, निराशा, दुख, हताशा, चिंता, फिक्र, ये आ जाता है। आप ठीक चल रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ आप ऐसा देख लेते हैं या कुछ आप ऐसा सुन लेते हैं कि आपके बारे में कुछ ऐसा हो रहा है, तो इसका क्या प्रभाव आता है? परेशानी आ जाती है। तो अब सवाल यह है कि हम मास्टर प्रेम के सागर या मास्टर शक्तियों के सागर तो नहीं रहे? मास्टर जो शक्तियों का सागर होगा उसको किसी प्रकार का प्रभाव मन पर आएगा क्या? वो तो पल भर में क्षमा करेगा। आज के मुरली में बाबा ने कहा कि अनदेखी कर दो, सी नो इविल, बड़ा अच्छा शब्द है, सी नो इविल, टॉक नो इविल, और क्या, हियर नो इविल, एक लाइन आगे जाके हम लोग कहते हैं थिंक नो इविल, बुरा सोचो भी नहीं। लेकिन व्यवहार में ये कैसे आएगा, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए शक्तियां और ताकत कहां से आवे, उसके लिए बल कहां से आवे, कहां से लाएं अपने अंदर, ये विषय है। इस विषय पर हम सभी लोगों को अपने अपने तरीके से बहुत गहराई से विचार करके ये बल अपने अंदर में धारण करना पड़ेगा। धीरे धीरे वो तब आएगा जब हम प्रैक्टिकल में वैसा आचरण करेंगे, यानी कि जब हम शांत रहेंगे, यानी जबकि हम ठहाका लगाकर नहीं हंसेंगे, यानी कि जब हम जोर जोर से नहीं बोलेंगे, जब हम किसी से नहीं लड़ेंगे। ये व्यावहारिक रूप से ऐसे अपनाएंगे ना, हमें किसी ने कुछ कह दिया लेकिन हम प्रतिक्रिया नहीं देंगे, हम पीसफुल रहेंगे, शांत रहेंगे, क्योंकि हम मास्टर प्रेम के सागर हैं। व्यवहार ऐसा दिखला रहा है कि हम परेशान हो जाते हैं छोटी सी बात से, इसका मतलब है कि स्व को हमने नहीं समझा है। हमारा जो अपना स्वरूप है वो क्या है? प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पवित्र स्वरूप है, अपना रूप तो यही है ना। जो कमियां कमजोरियां आई हैं द्वापर के बाद वो हमारे आचरण में आ गई, लेकिन हम हैं तो लाइट, हम तो बाप समान आत्माएं हैं, या कोई फर्क है? क्या लगता है आपको, आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कोई फर्क है या एक ही जैसा है? बोलिए, एक जैसा है ना। भूमिका में फर्क है, रोल में फर्क है, हमारा अपना पार्ट है, बाबा का अपना पार्ट है। बाबा जन्म मरण से नहीं आ रहा है, हम लोग जन्म पुनर्जन्म में आते रहते हैं, लेकिन ओरिजिनली जब हम यहां से लौटेंगे, अगर हमने अपने सारे दुष्कर्म, अपने सारे पाप योग बल से खत्म किए, तो ससम्मान घर जाएंगे, शांति धाम। अगर हम वैसा नहीं कर पाए तो धर्मराजपुरी में क्या होगा? धर्मराजपुरी में सजा मिलेगी, और जब धर्मराजपुरी में सजा मिल जाएगी तो हम दोष मुक्त हो जाएंगे। अपने से नहीं कर पाया अपने आप को दोष मुक्त, मगर बाबा की सजा के बाद, धर्मराज की सजा के बाद दोष मुक्त होकर के हम घर में गए, तो घर में अब आत्मा बिल्कुल प्योर है, ठीक है ना, उसकी सारी गंदगी खत्म हो गई। लेकिन हर आत्मा की भूमिका उसके साथ है, अगले 5000 साल का रोल उसमें, ड्रामा तो एक्यूरेट है ना, उसको उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, लेकिन आत्मा है वहां पर बिल्कुल ही अभी पावन। तो वही है हमारा अपना ओरिजिनल स्वरूप, उसी रूप में हम आते हैं पृथ्वी पर पहली बार। जब धरा पर स्वर्ग अवतरित होता है, जो कुछ दिन के बाद आने वाला है, वैसे हम लोग भी पृथ्वी के एक स्वर्ग पर ही बैठे हुए हैं, ज्ञान सरोवर तो एक स्वर्ग ही है। इस स्वर्ग भूमि पर सदुपयोग, इस समय का सदुपयोग करने के लिए ये सारे चिंतन, ये सारी योजनाएं हमें बनानी पड़ती है, बनाना पड़ता है, अपने को समझना पड़ता है, और धीरे 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 करके अपना श्रृंगार करना पड़ता है। धीरे धीरे करके हमें अपने आप को सजाना है, अपने आप को निगेटिविटी से, हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर करना है, अलग करना है। तो जैसे कि मैं अपने सूक्ष्म स्वरूप की बात कर रहा था फरिश्ता रूप का, तो फरिश्ता के बारे में तो हमें पता है, परियों की कहानी हमने सुनी है ना, परियां जो हवा में उड़ पाती है। तो वैसे ही जैसा हमारा पोस्चर है, जैसा हमारा फीचर है, अपना फरिश्ता रूप ऐसा ही है। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि अपना तीन स्वरूप है, अपने आप को तीन जगह पर निरंतर देखिए, एक सेकंड में। अभी यहां है, अगले ही पल अपना सूक्ष्म स्वरूप को बाबा के सामने देखिए, जाने का प्रयत्न नहीं करना है, हम वहीं हैं ही ऑलवेज। अपना एक स्वरूप वहां है और अपना फाइनल स्वरूप जो है वो परम धाम में है, बिंदी लाइट। तो ये नहीं कि हम जा रहे हैं, नहीं, हम हैं वहां। जैसे ही हमको ये महसूस होता है कि अभी हमारे ख्यालात थोड़े कमरे में आ गए, इस हॉल में, अगले पल इस ख्याल को मन से निकाल करके अपने आप को फिर से बाबा के सामने और फिर बाबा से वार्तालाप। व्यवधान नहीं पड़ता है, कोई बाधा नहीं आती है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है। आप वहां बैठे हैं और बाबा से शक्तियां ले रहे हैं, बाबा की सारी शक्तियां आपके अंदर में उतर रही हैं। तो शक्तियां प्राप्त करने का मतलब यह है कि मन में खुशी, मन में आनंद, मन में शक्ति, और सारा दिन अच्छे तरीके से चलने का आपको एक बल मिल गया। उस बल के हिसाब से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहां पर देखिए क्या होता है इस दुनिया में कि सीनियर्स दादियां हैं, उनकी दृष्टि प्राप्त करने के लिए हम बड़ी पंक्तियों में लग जाते हैं, है ना, कि दादियों की दृष्टि मिल जाए, पल भर की दृष्टि। तो क्यों नहीं सूक्ष्म वतन में जो ऑल माइटी है, सर्वशक्तिवान निराकार परमपिता परमात्मा शिव बाबा, ऐसा अभ्यास क्यों नहीं पक्का करें कि निरंतर उनकी दृष्टि से पलते रहें। यही योग बाबा ने बताया है ना, बाबा ने जो हमें योग बताया वो कौन सा, यही योग बताया है। तो ये सत्य है, क्या ख्याल है आपका, सत्य है या नहीं, ये विधि सत्य है या नहीं, है ना सत्य। तो प्रैक्टिकली हमें ये करना है, व्यवहारिक रूप से ये करना है। तो जब आप इस प्रकार से सूक्ष्म वतन में बाबा के पास जाकर के मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने उत्थान की बातें करते हैं, जगत के कल्याण की बातें करते हैं, और जब आप व्यस्त रहते हैं चर्चा में, तो क्या नींद का प्रभाव आएगा? वहां तो नो वैकेंसी लगा हुआ है, जगह नहीं है। उसका बोर्ड जब कोई टांग देता है तो फिर कोई आदमी वहां नौकरी के लिए तो नहीं आता है ना। तो जब आप व्यस्त रहते हैं बाबा के साथ, तो नींद नामक जो ये प्राणी है वो देखता है, वो नो वैकेंसी, तो विदाई ले लेता है, नहीं आएगा। और फिर आपका बिल्कुल सफल होगा योग भट्टी, यही तो लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है हमारा, कि हम अपने आप को धीरे 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 करके बलवान बनाते जाएं, शक्तिशाली बनाते जाएं। लेकिन अभी अभी हमने आपको निवेदन किया कि ये जगह जो है ये धराधाम पर एक स्वर्ग है, लेकिन क्या कई बार हम कुछ ऐसा भी देखते सुनते हैं कि उल्टा, बड़ा घर है ना, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आत्माएं हैं, बहुत प्रकार का चलन है, उससे भी अपनी सुरक्षा करनी है। अगर कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है तो सी नो इविल, हियर नो इविल, ठीक है, बाबा की जिम्मेवारी है, बाबा देखेगा। लेकिन सीधे सीधे अगर हमारे साथ कुछ उल्टा हो रहा है तो क्या करें, तो पदाधिकारियों तक, अथॉरिटीज तक जो निमित्त आत्माएं हैं, रिएक्ट नहीं करेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन निमित्त आत्माओं के कान में बात डालनी पड़ेगी, नहीं तो अपराध पलने लगेगा। ये भी अपना दायित्व है, क्या लगता है आपको, ये सही है या नहीं? हमें कुछ करना नहीं है, लेकिन चुपचाप सहन नहीं करना है, चुपचाप अनदेखी डायरेक्ट हो रहा है ना अपने साथ। अगर उनके साथ हो रहा है तो चलो ठीक है, आगे बढ़ गए, सीधा हम इन्वॉल्व नहीं है, वो जाने, उनका काम जाने, कैसे सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं ठीक है, लेकिन जब सीधे सीधे कोई बात हमारे साथ आती है तो फिर हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि नहीं, इससे पॉल्यूशन फैलता है, इससे प्रदूषण फैलता है कैंपस के अंदर में, वातावरण में हल्कापन आता है। तो ये हमारा दायित्व है यहां के स्पिरिचुअल पावर को उठा करके रखना। ऐसी स्थिति में निमित्त आत्माओं तक निश्चित रूप से बिना किसी भय के बात पहुंचानी चाहिए, तो उसका समाधान निकलता है, फिर आगे से इसमें सुधार होता है, उस सुधार का लाभ सबको मिलता है। ये सोच करके कि नहीं कैसे करें क्या करें, ये तो ये है वो तो वो है, ये ठीक नहीं। क्या लगता है, सही है, बोलिए। तो हमें अवसर को समझते हुए, उसको देखते हुए सही समाधान की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। भय किसी चीज का नहीं, किसी बात का नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, हम लोग अमर आत्माएं हैं ना, हम सभी बाबा के बच्चे हैं, अमर हैं। और अपनी शक्तियां जो हमने 2500 साल में खो दी है, उसको धीरे 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 करके हमें प्राप्त करना है वापस। इसके लिए अपने मन के अंदर में जाकर के बहुत टटोलना है, अपने आप को गहराई से जाकर के देखना है, अपनी ताकत को समझना है, और इसके साथ साथ शिव बाबा की ताकत को भी समझना है। शिव बाबा की ताकत को समझ लिया हमने, किसको लगता है आप में ऐसा कीजिए कि हमने शिव बाबा की ताकत को समझ लिया, समझ गए ना? ठीक है, अच्छा है, हम नहीं कहेंगे कि आपने नहीं समझा, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी तक नहीं समझा कि शिव बाबा के अंदर में कितना बल है। दुनिया का सारा सागर समाप्त हो जाए उससे ज्यादा बल है। आप कहेंगे कैसे? एक साधारण से घर में जो समस्याएं होती हैं, मां बाप उसको नहीं सुधार पाता है, सब चीज अपसेट। और इतनी बड़ी दुनिया की सारी समस्या को खत्म करके यहां स्वर्ग बना देगा कौन? कैसे कर रहा है? प्रत्यक्ष में है भी नहीं। आप अंदाजा लगाइए कि कितना बल है। एक विचार, एक आइडिया, एक सिद्धांत, एक थ्योरी, एक पढ़ाई उन्होंने हम तक पहुंचा दिया है ना। उस पढ़ाई के आधार पर हम देख रहे हैं धीरे 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 नरक जो है स्वर्ग बन रहा है, बदल रहा है। कोई भी ताकत दुनिया की इसमें रुकावट नहीं बन सकती, सब बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। इतना बड़ा संगठन है, कहीं कहीं कुछ कुछ एक दो अपसेट हो जाते हैं, सब चीज कितना बढ़िया चल रहा है, बाकी आश्चर्यजनक रूप से पीसफुल। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता है जहां 300 400 500 600 लोग रहते हों और कोई समस्या नहीं, सब कुछ समस्या रहित तरीके से बढ़िया से चल रहा है, ऐसा होता नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ बाबा के घर में होता है। ये बाबा के ईश्वरीय ज्ञान की ताकत है। हम लोगों ने उस ताकत को समझा है, हम लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा है। पूरी तरह जब हम लोग उसको उतार लेंगे तो फिर हम स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट प्राप्त कर लेंगे। कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ बातें उसमें रही हुई हैं, तो इन सभी चीजों के बारे में चिंतन करने का बड़ा अच्छा अवसर हमें कब मिलता है? जब हम बाबा को याद करने बैठते हैं। उस समय हमसे कभी कोई ये नहीं पूछता है कि भाई क्यों चुपचाप बैठे हुए हो। उस समय हमें वही करना है, अपने आप को जानना है, शिव बाबा को जानना है, उनसे जुड़ना है, उनसे बल लेना है, दुनिया के कल्याण के बारे में जानना है, सोचना है, विचार करना है, सब कुछ करना है, और बिल्कुल गहराई से, और उस वक्त का सदुपयोग करना है। उस वक्त का जब हम सदुपयोग कर लेंगे तो हमारे अंदर में ताकत रहेगा, हमारे अंदर में बल होगा, शक्तियां होंगी, और हम अपने सफर पर आगे बढ़ते चले जाएंगे खुशी खुशी, मौज से, आनंद से, प्रेम से। एक होता है बाबा बोलते हैं रेगड़ी पहन रहे हो, ऐसा नहीं। अब चूंकि इस शब्द का यूज करते हैं बाबा रेगड़ी का, तो जरूर कुछ ना कुछ तो लोग रेगड़ी पहनता ही होगा ना, शब्द है तो कुछ ऐसा आचरण भी होगा। ठीक है ना। तो उस प्रकार से नहीं, घिसट घिसट करके नहीं चलना है, घिसट घिसट के नहीं चलना है। अपने भाग्य के बारे में अपने आप को हर दिन जरूर याद दिलाना है, अपने भाग्य के बारे में अपने आप को जरूर याद दिलाना है कि कितना पद्मा पदम भाग्य है अपना, कि हम बाबा को पा सके, यहां आ गए। अभी रामपाल सत्संग की कहानी आपने सुनी होगी कुछ दिन पहले, सुना रामपाल का, वो भी एक सत्संग है, सुना था ना। अब देखिए वहां क्या होता है, वहां 1,00,000 रुपया लगता है स्वर्ग का टिकट बेचता है वो, पता है, सतलोक मतलब स्वर्ग, बहुत अजीब है। 1,00,000 रुपया वो अपने गरीब भक्तों से लेता है, लोग देते हैं, लोग सोचते हैं हम स्वर्ग में जा रहे हैं, हमें स्वर्ग में पहुंचा देगा। और उस बाबा के तहखाने से बंदूक राइफल गोली और न जाने क्या क्या निकला, उसने माताओं बहनों को आगे कर दिया जब पुलिस उसको गिरफ्तार करने आई। ऐसे ऐसे बाबाओं से भरा हुआ है ये संसार, और यहां पर क्या है, सब कुछ खुला हुआ है, पूरा दरबार ही खुला हुआ है। तो वो जो बाबा ने कहा है कि सत्य की नैया डोलेगी डूबेगी नहीं, अब वो समय आ रहा है जब सब की दुकान बंद हो जाएगी और बस एको हट्टी एकमात्र यही दुकान है जो अंत तक बची रहेगी। और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों ने बहुत पहले इस दुकान को जान लिया, इस दुकान से संपर्क किया, यहां से सौदा लिया, लगातार ले रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये खुशी की बात है, ये बड़ी अच्छी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा नहीं कि हल्के फुल्के तरीके से ही सब कुछ बीत जाए, कुछ सॉलिड प्राप्त हो जाए, कुछ तरीके से प्राप्त हो जाए, अपने आप को ऊंचा लेकर के जा सकें। एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, मेरा दावा है कि शिव बाबा सभी बच्चों को बराबर ही प्यार करते हैं। हम सभी उनके बच्चे हैं, तो बाप का प्यार अपने सभी बच्चों के लिए एक समान ही होता है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, परंतु बाबा का प्यार हम सभी बच्चों के लिए एक समान ही रहता है। और कोई दूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि जो आज की डेट में विशेष आत्माएं हैं उन पर विशेष नजर है, हमारे ऊपर बाबा की नजर कम है, ऐसा नहीं है। हमारे ऊपर भी बाबा की बिल्कुल उतनी ही मेहर है, उतनी ही कृपा है, उतनी ही नजर है जितनी किसी के ऊपर में है। तो इस अवसर का हमें फायदा उठा लेना है, बाबा की शक्तियों को समझ करके निरंतर बाबा के साथ रहना है। और कोई भी अपने आचरण में किसी प्रकार का कोई हल्कापन नहीं आने देना है, इसका ख्याल रखना है मर्यादाओं का, क्योंकि हमें लोग देखते हैं सभी को, ऐसा नहीं कि मुझे, हम सभी को लोग यहां देखते हैं कौन क्या कहां कैसे कर रहा है। बोलने नहीं आता है लेकिन देखते रहता है, और हमारे बारे में उसके मन में एक राय बनती चली जाती है अपने आचरण के हिसाब से, है ना। पल भर में आदमी का मूड ऑफ हो जाता है, 1 सेकंड लगता है। तो ये क्या हुआ, छोटी सी बात हुई, हल्की सी, आप देखेंगे उसका चेहरा बदल गया। तो ये तो कोई योग की अवस्था नहीं है ना। ईगो, इतना अहंकार है, अहंकार की सीमा नहीं है। तो दूसरे का देखने का जरूरत नहीं है, अपना कम करते जाना है। अगर बाबा ने नहीं अपनाया होता, अगर बाबा ने अपनी गोद में नहीं लिया होता तो कहां होते हम, विचार कीजिए। हम बाबा के इस सफर में आगे आए हैं, बहुत आगे आए हैं। हम सभी भाई बहनों ने बहुत सारे वैल्यूज को जीवन में धारण किया है, लेकिन टारगेट क्या है, 16 कला क्या है, 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसक अहिंसा परमो धर्म। तो ये टारगेट है। तो ये टारगेट बाबा ने ऐसे ही नहीं दिया है। हमारी पढ़ाई तो बहुत ऊंची है ना, नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी, तो बहुत लंबा सफर है। और चूंकि हम लोगों ने ये पान का बीड़ा उठाया है तो हमें फर्स्ट क्लास में पास होने के लिए प्रयत्न भी करना चाहिए। क्या जाता है इसमें, क्यों हल्के फुल्के तरीके से सारा दिन बिताएंगे, क्यों नहीं गंभीरता से अपने बारे में विचार करते हुए धीरे 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 व्यावहारिक रूप से अपने आप को गुणवान बनाते चलेंगे, सभी को सुख देंगे। सुख देंगे तो सुख प्राप्त होगा, सुख नहीं देंगे तो सुख प्राप्त नहीं होगा। तो इन सभी चीजों के लिए फिर वही बात आती है, बल की जरूरत पड़ती है। आपके खिलाफ कोई सोच रहा है, आपके खिलाफ कोई बोल रहा है, आप उसको कैसे सुख दीजिएगा। मगर बाबा चाहते यही हैं। बाबा कहते हैं कि जो तुम्हारा अपमान करता है उसको तुम फूलों का हार पहनाओ। बोलते हैं ना बाबा, ये करना भी है हमें, मगर कैसे, शक्ति कहां से आएगी। तो शक्ति मिलती है योग में। योग में हमारा अहंकार जो है वो बिल्कुल गल गल के, जैसे मोम पिघलता है ना मोमबत्ती, वैसे ही जितना जितना योग में हम अपने आप को जानते जाते हैं और शिव बाबा को पहचानते जाते हैं, शिव बाबा से अपना संपर्क जितना गहराई से जोड़ते चले जाते हैं, हमारा अहम, हमारा अहंकार, हमारा ईगो जो है उसे मोम की तरह धीरे 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 करके पिघलते जाता है। और जब हम निष्पाप बन जाते हैं तब हम लोगों को फूलों का माला, फूल की माला पहना सकेंगे, अगर वो हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करता है तो। बाबा यही चाहते हैं। हम जानते हैं सभी कि मंजिल बड़ी है, मंजिल ऊंची है, लेकिन बाबा तो हम बच्चों से कोई बड़ा काम ही लेना चाहेंगे ना। छोटे छोटे कामों के लिए तो बाबा ने हमारा चुनाव नहीं किया। तो सभी भाई बहनों से ये निवेदन रहता है अपना हमेशा ही, कि और कोई क्या करता है उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें अपनी रॉयल्टी को जरूर मेंटेन करना है, अपनी मर्यादा को मेंटेन करना है, बाबा के बताए हुए सारे मर्यादाओं को पालन करना है, सारी मर्यादाओं को, अपने जीवन को गुणवान बनाना है। रूहे गुलाब खुशबू आए उससे, और आगे बढ़ना है। इस प्रकार की चुनौती लेते ही आप देखेंगे कि माया जो है वो भी फुल फोर्स से हमारे साथ आती है। लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा हुआ है कि योग का कवच अगर धारण किया हुआ है तो विघ्नों के पहाड़ ही भले क्यों न गिर जाएं, वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। योग मतलब मैं कौन हूं, कनेक्शन, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, छोटी मोटी बातों से मेरा कुछ अहित होने वाला नहीं है। तो ये सारी चीजें फिर आ जाती है चिंतन के साथ। तो स्वचिंतन हो, योग का अच्छा अभ्यास हो, योग के समय का सदुपयोग हो, मर्यादाओं का पालन हो, ये सारी चीजें कर करके हम अपने आप को आगे लेकर के जा सकेंगे। तो एक बार पूर्णाहुति से पहले फिर से निवेदन है कि अगर बाबा की दृष्टि पानी है, बाबा का बल पाना है, बाबा का प्यार पाना है, तो बिल्कुल जागृत होकर के खुली आंखों से बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। थोड़ी कठिनाई होती है शुरू में, लेकिन धीरे धीरे वो सेटल होगा और तब जीवन में ज्यादा लाभ मिल सकेगा। ओम शांति।